الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورۃ الممتحنہ کی آیت نمبر 11 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ اس سے پچھلی آیات میں ان عورتوں کے احکام کا بیان تھا جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ جائیں اور وہ مکہ مکرمہ میں کسی کافر کی زوجیت میں تھیں۔ اب وہ مدینہ منورہ آ گئی تو اب ان کا سابقہ نکاح رہا یا نہیں، آئندہ نکاح کر سکتی ہیں یا نہیں، سابقہ شوہروں نے جو مہر وغیرہ دیا تھا اس کا کیا حکم بنے گا، اس طرح کے احکام پر مشتمل تھا۔ تو اب اسی میں سے مزید یہاں پر چند احکام کا بیان ہے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ اور اگر تم مسلمانوں کے ہاتھ سے تمہاری کچھ عورتیں کافروں کی طرف نکل جائیں پھر تم کافروں کو سزا دو، تو جن کی بیویاں چلی گئی تھیں انہیں مال غنیمت میں سے اتنا دے دو جتنا انہوں نے خرچ کیا تھا، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ اس سے پچھلے رکوع میں جو احکام دیے گئے تھے وہ یہ تھا کہ جو عورتیں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آ جائیں تو مسلمان سابقہ جو کافر شوہر ہیں ان کو حق مہر دے دے اور ان عورتوں سے نکاح کر لے، انہیں حق مہر دے کے۔ اور اس کے مد مقابل دوسرا حکم یہ بیان کیا گیا تھا کہ جو مسلمان عورتیں مکہ مکرمہ چلی جائیں تو وہاں جو کافر لوگ ان سے نکاح کریں وہ مسلمانوں کے حق مہر ادا کریں گے۔ اب ہوا یہ کہ مسلمانوں نے تو اس حکم الہی پر عمل کر لیا اور جن عورتوں سے انہوں نے نکاح کیا ان عورتوں کو بھی حق مہر دیا اور ان کے سابقہ شوہروں کو بھی دے دیا، لیکن دوسری طرف کفار نے اس طرح دینے سے انکار کر دیا تو اب مسلمانوں کا تو اس میں نقصان ہوا۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے ہاتھ سے عورتیں کافروں کی طرف نکل جائیں اور وہ کافر تمہیں تمہارے حق مہر ادا نہ کرے تو پھر تم ان کو سزا دو، یعنی جب ان سے مقابلہ ہوگا پھر ان کو سزا دو، اور جو مال غنیمت ملے گا تو اب ان مسلمانوں کو وہ ادا کیا جائے گا۔ تو یہ احکام دیے گئے۔ لیکن اس کے بارے میں ایک بات میں عرض کروں کہ یہ تمام احکام جو پچھلی آیات میں بیان ہوئے اور یہاں پر بیان ہوئے، یہ تمام احکام جہاد والی آیت سے یا غنیمت والی آیت سے یا احادیث سے منسوخ ہو گئے تھے، کیونکہ یہ احکام تب تک باقی رہے جب تک مسلمانوں کا اور اہل مکہ کا معاہدہ باقی رہا۔ جب وہ معاہدہ ختم ہو گیا تو یہ احکام بھی ختم ہو گئے۔ اب اس کے بعد مزید چند احکام کا بیان ہے، اور یہ بھی ان عورتوں کے بارے میں ہیں کہ جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئیں۔ یہ آئیں تو اب ان کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت کرنا تھا، انہوں نے بیعت کا مطالبہ کیا کہ ہمیں بیعت کیجئے۔ اس پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد، اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیات مبارکہ نازل فرمائی، ارشاد ہوا، یا ایہا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور الرحیم۔ اے نبی، جب مسلمان عورتیں تمہارے حضور اس بات پر بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی اور نہ چوری کریں گی اور نہ بدکاری کریں گی اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی اور نہ وہ بہتان لائیں گی जिसे अपने हाथों और अपने पांव के दरमियान में गणें और किसी नेक बात में तुम्हारी नाफरमानी ना करेंगी तो उनसे बैअत लो और अल्लाह से उनकी मगफरत चाहो, बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। इस आयत मुबारक में नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जो अहकाम दिए गए वो बड़े वाज़े हैं कि जब मोमिना औरतें आपके पास बैअत के लिए हाजिर हों, बैअत किस बात पे करेंगी, शिरक नहीं करेंगी, बदगारी नहीं करेंगी, चोरी नहीं करेंगी, बहतान नहीं लगाएंगी, अल्लाह रसूल की इताअत करेंगी, नफरमानी नहीं करेंगी, जब इन चीज़ों की बैअत करने के लिए आएँ तो आप इनके साथ उनको बैअत कर लें और उनकी बख्शिश की दुआ मांगें। तो बैअत के अहकाम जो है ये बड़े वाज़े हैं। फतेह मक्का के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब मर्दों से बैअत लेकर फारिग हुए तो उसके बाद आपने औरतों से बैअत लेना शुरू की तो उस वक्त ये आयत मुबारक नाजिल हुई। उसमें फिर आगे काफ़ी सारे वाकयात भी हैं और एक रिवायत के मुताबिक औरतों ने इन उमूर का इकरार किया और 457 औरतों ने बैत की। अब यहाँ पर जो बैत की गई इसका तरीक़ाकार क्या था? मर्दों के साथ तो बैत यूँ थी कि हाथ में हाथ दिया जाता था, ये मर्दों के साथ बैत। औरतों के साथ हाथ में हाथ देकर बैत करना जायज़ नहीं है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कैसे बैत की? हदीस मुबारक में वाज़े तौर पे है, हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, बुखारी शरीफ की रिवायत, फरमाया अल्लाह की कसम बैत करते वक्त नबी पाक अलैहिस्सलाम के हाथ ने किसी औरत के हाथ को मस नहीं किया, आप उनको सिर्फ अपने कलाम से बैत करते थे, सिर्फ गुफ्तगू से आपने बैत की, आपने किसी औरत के हाथ को मस नहीं किया। तो एक और एक रिवायत के अंदर बैत की कैफियत यूँ बयान की गई है कि पानी का एक बड़ा सा बर्तन था, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उस बर्तन में अपना दस्ते मुबारक डाला और उसी बर्तन में दूसरी तरफ औरतों ने अपने हाथों को डाला और यूं बैत की गई और बाद में ये कहा कि कपड़े के वास्ते से बैत ली गई, यानी नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कपड़े को थामा और उसी कपड़े को आगे औरतों ने थाम लिया, तो बैत करने का ये अंदाज था। इससे बड़ा वाज़े तौर पे ये पता चलता है कि पीर और मुरीदनी के दरमियान पर्दा है। अगर वो ना महरम है, जैसे बीवी अगर मुरीदनी अगर ना बीवी है ना महरम औरत है, तो अब इस सूरत में पर्दे के जैसे अहकाम किसी भी अजनबी मर्द और औरत के दरमियान हो सकते हैं वो सारे के सारे अहकाम यहाँ पर लागू होंगे। तो बाद अवकात ये जो होता है ना कि किसी जगह पर पीर साहब आए तो अब सारी औरतें जमा हैं, बस सर पे दुपट्टा रखा, चेहरे नंगे, आके पीर साहब जो है वो सर के सरों पे हाथ फेर रहे हैं और औरतें जरा झमकट्टा लगा के बैठी हुई हैं और पीर साहब दरमियान में विराजमान हैं, ये सब तरीके खिलाफ सुन्नत हैं और इनमें बहुत सारे तरीके हराम हैं। औरत अपने पीर के हाथ को न छू सकती है न दस्तबोसी कर सकती है, उसके लिए जायज़ नहीं है। ये बड़ी वाज़ अहकाम हैं जो अहादीस मुबारक में बयान किए गए। हमारे यहाँ जाली पीर या खिलाफ शरा काम करने वाले पीर फिर ऐसी ऐसी हरकतें और करतूतें करते हैं कि फिर बाद में तमाशा बनता है, लेकिन वो तमाशा इसलिए बनता है कि हुक्म शरीयत पे अमल नहीं किया। औरतों को हज़ार समझा दें, मर्दों को हज़ार समझा दें कि भाई पीर मुरीदनी का पर्दा होता है, लेकिन ना मर्दों को पहले समझ आती है ना औरतों को समझ आती है, और जब कोई केस रूनुमा होता है और जब कोई कोई ना कोई हरकत सरजद होती है तो फिर सारा मोहल्ला शोर मचा कर बैठा होता है, तो देखो जना पीर साहब ने क्या कर दिया, देखो जी पीर मुरीदनी के चक्कर चल रहे। तो भाई पहले ही हुक्म शरीयत पे अमल किया हो तो फिर ये वाली चीज़ें सामने ना आए, ऐसे वाक़या सामने ना आए। अच्छा, इसी से एक और बात भी पता चली कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने यहाँ जो बैत की थी ये बैत किन चीज़ों की है? शिरक नहीं करेंगी, चोरी नहीं करेंगी, बदकारी नहीं करेंगी, बहतान नहीं लगाएंगी, नाफरमानी नहीं करेंगी अल्लाह रसूल की। तो ये जो बैत थी ये बैत तकवा भी है, ये बैत इस्लाम भी है, ये बैत तौबा भी है। तो बैत कभी तो बैत इस्लाम होती है कि मुसलमान होने के लिए बैत की, कभी बैत तौबा होती है गुनाह से तौबा के लिए, कभी बैत तकवा होती है और कभी जो है वो किसी और, कभी बैत जिहाद भी होती है वो भी की जाती। तो बैत की मुख्तलिफ अकसाम है। आज हमारे ज़माने में जो मशायख किराम बैत लेते हैं, जैसे हम मुरीद होते हैं, ہم کسی شیخ کامل کے جامع شرائط کے ہاتھ پہ مرید ہوتے ہیں تو یہ بیعت تقوی، بیعت توبہ، بیعت برکت، یہ اس طرح کی صورتیں ہوتی ہیں اور ان کا جواز قرآن سے اور احادیث طیبہ سے ثابت ہے۔ اب اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور۔ اے ایمان والو، ان لوگوں سے دوستی نہ کرو جن پر اللہ نے غضب کیا، بے شک وہ لوگ آخرت سے نا امید ہو چکے ہیں جیسے کافر قبر والوں کے دنیا میں لوٹنے سے نا امید ہو چکے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان لوگوں سے دوستی نہ کرو جن پر خدا کا غضب ہے، جو کافر ہے ان سے دوستی نہ کرو، جو کفار ہے ان سے دوستی کرنا منع ہے، وہ خدا کے غضب کے مستحق ہیں، خدا کے غضب کا شکار ہیں، اور یہ آخرت سے ایسے نا امید ہو چکے کہ جیسے کافر قبر والوں کے دنیا میں لوٹنے سے نا امید ہو چکے۔ تو یہ بڑا واضح حکم ہے کہ کافروں کو دوست بنانا منع ہے۔ یہ اتنی صراحتوں کے ساتھ ہمارے قرآن کے اندر یہ احکام موجود ہیں، لیکن افسوس ہے کہ ہمارے لوگ کرسمس کا موقع آتا ہے تو عیسائیوں کو دوست بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں، ہولی دیوالی آتی ہے تو ہندوؤں کو اپنا دوست اور جگری یار بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ایسی دوستیاں منع ہیں، ایسی دوستیاں شرعاً جائز نہیں ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ یہ ختم ہوگی، اب اس کے بعد سورہ صف شروع ہوتی ہے۔ سورہ صف کی ابتدا ہوتی ہے، سورہ صف کے بارے میں دو قول ہیں، ایک یہ کہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور ایک یہ کہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ میں دو رکوع اور 14 آیتیں ہیں۔ صف کا معنی ہوتا ہے سیدھی قطار، صف جسے ہم عرف عام میں بھی صف کہتے ہیں، یوں بالکل سیدھی۔ اس سورہ مبارکہ میں چونکہ آیت نمبر 4 کے اندر کلمہ صفن مذکور ہے تو اس کی مناسبت سے اس کا نام سورۃ الصف ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم، یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اللہ کی پاکی بیان کی ہر اس چیز نے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، اور وہی بہت عزت والا بڑا حکمت والا ہے۔ اے ایمان والو، وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ اللہ کے نزدیک یہ بڑی سخت ناپسندیدہ بات ہے کہ تم وہ کہو جو نہ کرو۔ پہلی آیت اللہ تعالیٰ کی تسبیح کے حوالے سے کہ آسمان و زمین کی ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ دوسری آیت جو بیان کی گئی اس میں جو حکم دیا گیا وہ بھی بڑا واضح ہے کہ کیوں کہتے ہو وہ بات جو تم کرتے نہیں۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ اس کے کئی معنی بن سکتے ہیں۔ ایک اس کا معنی یہ ہے کہ تم دوسروں کو وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے، دوسروں کو بولتے ہو یہ گناہ نہ کرو، یہ گناہ نہ کرو، یہ گناہ نہ کرو، اور خود وہی کرتے ہو، تو وہ دوسروں کو کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسروں کو کہنا چھوڑ دو، اس کا مطلب یہ ہے جب دوسروں کو کہتے ہو تو خود بھی کرو۔ یہ بھی ایک بڑا کنفیوژن لوگ کریٹ کر دیتے ہیں کہ جو بندہ کسی گناہ سے بچتا نہیں تو وہ دوسرے کو بھی بچنے کا نہ کہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم پر گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے، دوسرے کو بچانا بھی ضروری ہے۔ اب اگر بالفرض ہم گناہوں سے نہیں بچتے تو دوسرے کو تو بچائیں۔ تو یہ جو فرمایا نا کہ دوسرے کو کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر خود نہیں کرتے تو دوسرے کو بھی نہ کہو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب دوسرے کو کہتے ہو تو خود بھی کرو۔ تو گویا یہ عمل کی ترغیب ہے، نہ کہ نہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو ایک تو اس کا معنی یہ ہے، دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ وہ بات، اس بات کا وعدہ کیوں کرتے ہو جو تم نے کر رہی نہیں۔ وعدہ کر لیا جی میں غریبوں کی اتنی مدد کروں گا، ایک جگہ پہ اعلان ہو رہا ہے، کھڑے ہو کے ہاتھ کھڑا کر دیا، جناب میں بھی اتنے پیسے دوں گا، جب دینے کا موقع آیا تو پتہ ہی کوئی نہیں، نکل گئے، اور ہاتھ اٹھاتے وقت ہی دل کے اندر موجود ہے یار دینا وینا تو ہے نہیں، یا دیکھیں گے سوچیں گے۔ تو کیوں کہتے ہو، کیوں وہ لوگوں سے وہ وعدہ کرتے ہو کہ جو تم نے پورا ہی نہیں کرنا۔ تیسرا اس کا مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا कि क्यों कहते हो वो बात जो तुम करते नहीं, यानी क्यों उन बातों के दावे करते हो कि मैं तो ये करता हूं, मैं तो वो करता हूं, जो तुम करते ही नहीं। लोगों को बोलते फिरते हो कि मैं तहज्जुद पढ़ता हूं, हालांकि तुम तहज्जुद पढ़ते ही नहीं, तो जो करते नहीं हो बोलते क्यों? तो ये इस माना के अंदर है कि क्यों दावा करते हो उस चीज का, उस चीज के करने का जो तुम करते ही नहीं हो। ये तीन मफहूम मैंने इसके अर्ज किए हैं और ये इसके बड़े वाजे वाजे जो है वो मानी को बयान कर देते हैं। अब अगली आयत में इरशाद होता है, इन्नल्लाह युहिब्बुल्लज़ीन युकातिलून फी सबीलिही सफ्फन कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। बेशक अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत फरमाता है जो उसकी राह में इस तरह सफ़े बांध कर लड़ते हैं गोया वो सीसा पिलाई हुई दीवार है। पिछली आयत में क्या था कि अल्लाह की बारगाह में सख्त नापसंदीदा है ये बात कि तुम वो कहो जो करते नहीं, वहां नापसंदीदा बात का बयान और यहां पसंदीदा बात का बयान, वहां नापसंदीदा लोगों का बयान कि क्यों कहते हो जो करते नहीं, और यहां पसंदीदा लोगों का बयान कि खुदा को महबूब कौन है, खुदा को प्यारे कौन है। तो वो कौन है? फरमाया जो अल्लाह की राह में इस तरह सफ़े बांध कर लड़ते हैं जैसे सीसा पिलाई हुई दीवार है, रखना नहीं, मजबूत और नाकाबिल तस्खीर और भरपूर तरीके से जम के खड़े। तो राह खुदा में जो अपने मौके पर जो जाने कुर्बान करने के लिए हाजिर हो जाते हैं ये उनकी शान है। कुफार ने मुसलमानों पे हमला किया या जो जिहाद की दूसरी शरई सूरतें हैं उनके मुताबिक जिसने इस अमल में हिस्सा लिया और वो फिर डट के और जम के खड़े हैं, तो फरमाया अल्लाह को ये लोग महबूब हैं जो दीन इस्लाम के दिफा के लिए, जो इस्लामी सल्तनत के दिफा के लिए, जो एलाए कलिमतुल्लाह के लिए, जो दीन इलाही की बका और तरवीज के लिए यूं राह खुदा में निकलते हैं और यूं डट के खड़े होते हैं जैसे सीसा पिलाई हुई दीवार होती है। फरमाया खुदा को ये लोग पसंद हैं, ये महबूब हैं खुदा के, ये प्यारे हैं खुदा के। अब इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने मुतअद्दी चीज़ें बयान फरमाई हैं। पहले उन लोगों का बयान जिन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ईज़ा पहुँचाई और मूसा अलैहिस्सलाम का उनसे कलाम। फिर उन लोगों का बयान जिन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को तकलीफ पहुँचाई और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का उनसे कलाम। फिर उसके बाद उन लोगों का बयान जो वो बातें करते हैं जिन्हें खुदा फरमाता है कि ये खुदा को ईज़ा देते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम को ईज़ा देने वाले, ईसा अलैहिस्सलाम को ईज़ा देने वाले और खुदा को ईज़ा की बातें करने वाले, अल्लाह ताला ने उनका बयान किया। और इसमें क्या है? इसमें दर्स है नबी पाक अलैहिस्सलाम के लिए भी कि नबियों को जिनकी तरफ उन्हें भेजा जाता है उनकी तरफ से तकालीफ का सामना आता है, लिहाजा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र भी करें, इस्तिकामत भी दिखाएं और अपने जो अपने उमूर मनसबी जो हैं, मनसब रिसालत के उमूर हैं, उन्हें तनदही के साथ अदा करते रहें। इरशाद होता है, وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ। और याद करो जब मूसा ने अपनी कौम से फरमाया, ऐ मेरी कौम मुझे क्यों सताते हो, हालांकि तुम जानते हो कि मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल हूं। फिर जब वो टेढ़े हुए, वो लोग टेढ़े हुए, तो अल्लाह ने उनके दिल टेढ़े कर दिए और अल्लाह नाफरमान लोगों को हिदायत नहीं देता। ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का अपनी कौम से खिताब कि मुझे क्यों तकलीफ देते हो और क्यों मेरे ऊपर झूठी तोहमतें लगाकर सताते हो, हालांकि तुम्हें पता है मैं खुदा का रसूल हूँ और खुदा के रसूल की इताअत की जाती है, ताज़ीम की जाती है, अदब किया जाता है, मोहब्बत की जाती है उससे, उसकी बात को माना जाता है, उसके राहत व आराम का ख्याल रखा जाता है, तो तुम्हें क्या है कि तुम मुझे तकलीफ देते हो हालांकि तुम जानते हो मैं खुदा का रसूल हूँ। अब इसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा। अच्छा, फिर ये भी बता दिया कि जब वो लोग टेढ़े हुए, मूसा अलैहिस्सलाम की बेअदबी करके वो लोग टेढ़े हुए, तो खुदा ने उनके दिलों को टेढ़ा कर दिया। तो पता चला कि जो नबी के बेअदब और गुस्ताख होते हैं उनके दिल टेढ़े होते हैं, और ये आज भी आप देख रहे हैं, जो माद अल्लाह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के गुस्ताख हैं, उनके दिल टेढ़े हैं, और उनके दिल का टेढ़ापन और उनका नबी पाक अलैहिस्सलाम के जिक्र मुबारक से, तज़ीम से, अजमत सुन के बुग्ज़ जो है वो फ़ौरन ज़ाहिर हो जाता है। तो ये दिल के टेढ़े लोग हैं, अगरचे ज़ाहरी एतबार से कितने भी अच्छे नज़र आए और कितने ही बज़ाहिर मुत्तकी और परहेज़गार नज़र आए। अब इसके बाद आगे इरशाद होता है, وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ। और याद करो जब ईसा बिन मरियम ने फरमाया, ए बनी इसराइल, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल हूं, अपने से पहली किताब तौरात की तस्दीक करने वाला हूं और उस अजीम रसूल की बशारत देने वाला हूं जो मेरे बाद तशरीफ लाएंगे, उनका नाम अहमद है। फिर जब वो उनके पास रोशन निशानियां लेकर तशरीफ लाए तो उन्होंने कहा ये खुला जादू है। ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा, ईसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल से फरमाया कि मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल हूँ, पहले जो किताब तौरात तुम पर नाजिल की गई थी मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए, मैं उसकी तस्दीक करने वाला हूँ। और तस्दीक करने के साथ साथ एक और जगह पर यह भी फरमाया कि जो अल्लाह ताला ने पहले कुछ चीज़ें हराम की थी, मैं उनकी उनमें से बाज़ चीज़ों को मनसूख करके हलाल बताने आया हूँ। और इसके साथ साथ जो अहम मेरी जिम्मेदारी है, ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि जो मेरे अहम काम है जिसके लिए अल्लाह ताला ने मुझे भेजा है, वो ये है कि मैं उस अजीम रसूल की बशारत देने आया हूँ जो मेरे बाद में आने वाला है, जिसका नाम नामी इसम गिरामी अहमद होगा। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बशारत दी कि मैं तो दुनिया में जो आया हूँ, मेरे आने के मकासद में एक अजीम मकसद ये है, एक अजीम मकसद ये है कि जो मेरे बाद में अजमत वाला रसूल आने वाला है, मैं उसकी बशारत देने आया हूँ। और उसका नाम क्या होगा, पहले बता दिया, उसका नाम नामी इस्मी ग्रामी अहमद होगा। सुबहान अल्लाह, ये हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान और आपका मिलाद है, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने आपकी तशरीफ आवरी से पहले ही बयान किया कि मेरे बाद में आने वाला। हम तो मिलाद मनाते ना ये कह के हुजूर आए, हुजूर आए, तो हुजूर के आने का तस्किरा जिक्र विलादत है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने आने से पहले जिक्र विलादत किया कि हुजूर आने वाले हैं, आने वाले हैं जिनका नाम अहमद होगा। तो ये आपने अपनी कौम को बताया, और बताने का मकसद ये था कि जब वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएं तो ऐ लोगों, तुमने उन पर ईमान लाना है, तुमने उन पर ईमान लाना है, बताने का मकसद ये था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जो ये बिशारत है, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खुद भी एक जगह इरशाद फरमाई है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह खुद फरमाया कि मैं बशारत ईसा हूँ, मैं ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत हूँ। तो ये नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इसी आयत मुबारक की तरफ इशारा फरमाया। अब इसके बाद अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है उन लोगों का जो माद अल्लाह खुदा पर इफ्तरा करते हैं, झूठ बांधते हैं, और यूं ज़ाहरी एतबार से ईज़ाए खुदा बंदी के कलिमात कहते हैं। अल्लाह ताला इससे पाक है, उसको ईज़ा दीजिए, लेकिन ईज़ा के अल्लाह ताला की तरफ नस्बत के खुदा को ईज़ा देते हैं, ये कुरान पाक के अंदर भी मौजूद है, युअबून अल्लाह व रसूला, तो वो इसी तरह के कलिमात के एतबार से इरशाद होता है, वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहिल कज़िबा वहुवा युदअ इलल इस्लाम वल्लाहु ला यहदिल कौमल ज़ालिमीन। और उससे बढ़कर ज़ालिम कौन जो अल्लाह पर झूठ बांधे हालांकि उसे इस्लाम की तरफ बुलाया जाता हो, और अल्लाह ज़ालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। फरमाया कि इससे बड़ा ज़ालिम कौन जो खुदा पर झूठ बांधे शिर्क के जरिए, झूठी नबूवत के दावे के जरिए जो खुदा पे झूठ बांधे, उससे बड़ा जालिम कौन या खुदा के भेजे हुए कलाम को झूठा कहे, तो जो खुदा को माद अल्लाह झूठा कहे उससे बढ़कर जालिम कौन। फरमाया हालांकि उसे इस्लाम की तरफ, बंदे को इस्लाम की तरफ बुलाया जा रहा है, तो अल्लाह ताला ऐसे जालिमों को हिदायत नहीं देता जिनके सामने हर चीज़ वाजे हो चुकी और बिल्कुल अयां हो चुकी, और फिर वो अपनी सरकशी और इनाद और ज़िद के ऊपर डटे रहते हैं। तो अल्लाह ताला जबरन पकड़ के किसी को हिदायत नहीं देता, अल्लाह ताला दलाइल उसके सामने बयान कर देता है, हिदायत के रास्ते उसके सामने जो है वो जाहिर फरमा देता है। इख्तियार करना हिदायत को या ना इख्तियार करना वो बंदे का काम, अल्लाह ताला जबरन किसी को धक्के दे के हिदायत नहीं देता। अब इसके बाद इरशाद होता है, युरीदून लियुतफिऊ नूरल्लाहि बिअफवाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिहि वलौ करिहल काफिरून। वो चाहते हैं कि अल्लाह का नूर अपने मुंहों से बुझा दें, और अल्लाह अपने नूर को मुकम्मल करने वाला है अगरचे काफिरों को नापसंद हो। इरशाद फरमाया कि काफिर तो ये चाहते हैं कि कुरान पाक को जादू कहकर, ये बातें करके कि कुरान तो जादू है, इस्लाम को बातिल कर दें। फरमाया ऐसा नहीं होगा, वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, अल्लाह अपने नूर को पूरा करने वाला है, उसे पूरा करके छोड़ेगा, इस्लाम को उरूज बख्शेगा, इस्लाम को कमाल अता फरमाएगा, अपने दीन को सरबुलंदी देगा, हक का कलिमा बुलंद होगा। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून, चाहे कुफार बड़ा नापसंद करें, बड़ा उसके ऊपर तपें और बड़ा कुछ जब वबीला करें, कि अल्लाह ताला इस्लाम के नूर को पूरा करके छोड़ेगा, इसे बुलंद करके छोड़ेगा। और ये आप अपनी आंखों के सामने देख लें, नबी पाक अलैहि सलातु वस्सलाम मक्का मुकरमा में थे तो हालात से नज़र आता था कि इस्लाम तरक्की करेगा, लेकिन इस्लाम ने की। ग़ज़वा बदर के अंदर कुफार जमा होकर मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए आ गए, लगता था कि मुसलमान फतह हासिल करेंगे, नहीं, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको नेस्तो नाबूद कर दिया काफिरों को, और मुसलमानों को फतह अता फरमाया। उसके बाद कितने हालात है, चंगेज़ खान ने हमला किया, लगता था कि मुसलमान बाकी बचेंगे, लेकिन नहीं, अल्लाह ताला ने बचाया, अल्लाह ताला ने इस्लाम को सरबुलंदी अता फरमाई। तो अल्लाह ताला जो है वो अपने नूर को मुकम्मल फरमाने वाला है। अब उसके बाद अगली आयत में मज़ीद इसी बात को बयान किया जाता है, इरशाद होता है, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिही वलव करिहल मुशरिकून। वही है जिसने अपने रसूल को हिदायत और सच्चे दीन के साथ भेजा ताकि उसे सब दीनों पर गालिब कर दे अगरचे मुशरिकों को नापसंद हो। फरमाया अल्लाह कौन है, अल्लाह वो है जिसने अपने रसूल को भेजा, ये खुदा का तारुफ, ये अल्लाह ताला का तारुफ, कौन, जिसने अपना रसूल भेजा। अल्लाह ताला अपना तारुफ अपने महबूब अलैहिस्सलाम के जरिए करवाता है, अपनी दीगर शानों के जरिए भी, लेकिन ये भी खुदा की पहचानों में से और उसके तारुफों में से एक तारुफ है कि खुदा वो है जिसने मोहम्मद को भेजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने रसूल को भेजा हिदायत के साथ और सच्चे दीन के साथ। और फरमाया कि अल्लाह ताला इस दीन को और इस नबी को सारे दीनों पर गालिब कर देगा अगरचे मुशरिकों को नापसंद। अल्लाह ताला इस्लाम को गालिब करेगा, और आपके सामने है कि इस्लाम कैसा गालिब हुआ, दुनिया का गालिब तरीन दीन इस्लाम था, दुनिया में सबसे गालिब दीन इस्लाम था। बकिया लोगों को जो फतूहात मिली वो बेतबार दीन के नहीं थी, सिकंदर यूनानी का दुनिया पे कब्जा हुआ लेकिन वो दीन का गलबा नहीं था, वो तो उसकी हवस थी मुल्कों को फतह करने की, तो हुक्मरानी की हवस थी जिसने गलबा पाया, और फिर बड़े बड़े कैसर व किसरा थे, तो ये अपने मज़हब को गालिब नहीं कर रहे थे, वो अपनी कौम को और अपने रंगो नस्ल वाली चीज़ों को गालिब कर रहे थे। दीन का जो गलबा दुनिया के अंदर हुआ वो दीन इस्लाम का है। आज भी दुनिया के अंदर ईसाई हैं, हिंदू हैं, दीगर मजाहिब हैं, आप देख रहे, सबसे बड़ा मजहब की बुनियाद पर जो दीन गालिब है वो कौन सा है, इस्लाम। अभी लोग कहते हैं कि ईसाइयों की तादाद सबसे ज़्यादा, कभी हकीकत जाके देखें पता चले ईसाइयों की तादाद सबसे ज़्यादा मुसलमानों की तादाद, ईसाइयों की तो अक्सरियत दहरिया हो चुकी है, अमेरिका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, इन ममालिक के ईसाइयों की अक्सरियत दहरिया हो चुकी, वो अपने दीन मजहब को छोड़ चुकी, खुदा की मुनकिर हो चुकी, तो वो कहाँ से ईसाइयों के अंदर शामिल हो गए। तो मजहब को मानते हुए मजहब पर चलने वाले आज भी देखे तो इस्लाम है, फिर सुपर पावर इस्लाम रहा, और दोबारा इमाम मेहदी के ज़माने में इस्लाम होगा, सुपर पावर इस्लाम होगा। और फिर दरमियान के कितने अरसे ऐसे गुजरे, सल्तनत उस्मानिया का ज़माना था, इस्लामी दुनिया के अंदर सुपर पावर था, इस्लामी गालिब था, बनू अब्बास के ज़माने में इस्लामी गालिब था, बनू उमैया के ज़माने में इस्लामी गालिब था। तो यूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इस्लाम को सदियों 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 गलबा अता फरमाया, और अब भी दलाइल के एतबार से और अपने वसाइल के एतबार से और अभी भी मज़हब पर मज़हब को मानने और अमल करने के एतबार से दुनिया में मुसलमान ही गालिब हैं। अब इसके बाद अगली आयत मुबारक इरशाद होता है, या अय्युहल्लज़ीन आमनु हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाहि बि अमवालिकुम व अनफुसिकुम ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ। اے ایمان والو، کیا میں ایسی تجارت پر تمہاری رہنمائی کروں जो तुम्हें दर्दनाक अजाब से बचा ले? तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखो और अल्लाह की राह में अपने मालों और अपनी जानों के साथ जिहाद करो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानो। वो अल्लाह तुम्हारे गुनाह बख्श देगा और तुम्हें उन बागों में दाखिल फरमाएगा जिनके नीचे नहरें रवा हैं, और पाकीज़ा रिहाइश गाहों में जो हमेशा रहने के बागों में है, यही बहुत बड़ी कामयाबी है। ये आयत मुबारक बड़ी प्यारी और बड़ी वाज़े है कि दुनिया में अक्सर व बेशतर जो हमारा जहन होता है वो ये होता है, यार किसी ऐसी तिजारत का पता चल जाए जिसमें नफा ही नफा, फ़ायदा ही फ़ायदा, मौजें ही मौजें, पैसा ही पैसा, आसाइशें आसाइशें, राहतें राहतें, आसानियाँ आसानियाँ। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं तुम्हें बताऊं, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला हमें खालिक मालिक राज़िक अहकमुल हाकिमीन अरहमुर राहिमीन, सुभान अल्लाह, वो हमें इरशाद फरमाता है सवालिया अंदाज, एक तरगीब के लिए, तशवीक शौक डालने के लिए, फरमाया कि ऐ ईमान वालो, क्या मैं तुम्हें बताऊँ ऐसी तिजारत जो तुम्हें दर्दनाक अजाब से नजात दे दे? और इससे बढ़ के और तिजारत क्या हो सकती? अब अल्लाह ताला खुद फरमाता है वो तिजारत क्या है, फरमाया अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ, अल्लाह की राह में जानों मालों के साथ जिहाद करो, जान कुर्बान करने की जरूरत पड़े जान निछावर कर दो, माल देना पड़े माल दे दो अल्लाह की राह में, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानो। और सिला क्या मिलेगा? अल्लाह ताला फरमाता है कि वो खुदावंदे कुद्दूस तुम्हारे गुनाह बख्श देगा, तुम्हें जन्नतों में दाखिल करेगा, बाहों में दाखिल करेगा, ऐसे बाग जिसके नीचे नहरें रवा हैं, नहरें जारी, और तुम्हें दाखिल करेगा पाकीज़ा महलों में, पाकीज़ा रिहाइश गाहों में, पाकीज़ा रिहाइश गाहों में दाखिल करेगा। और वो कहाँ पर हैं? फरमाया अदन के बागों में, बसने के बागों में, सुभान अल्लाह। और फरमाया ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, ये बहुत बड़ी कामयाबी है, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और वाकई जिस तिजारत को खुदा फरमाए कि मैं तुम्हें बताऊं कौन सी तिजारत जो तुम्हें नफ़ा देगी नजात देगी, तो उससे बढ़कर तिजारत क्या हो सकती है? खुदा पे ईमान, खुदा के रसूल पे ईमान, और फिर सच्ची इताअत, सच्ची इताअत अल्लाह की, अल्लाह के रसूल की, नबी पाक अलैहिस्सलाम की इत्तिबा, फिर राह खुदा में जान माल कुर्बान करने के लिए तैयार रहना, इससे बढ़कर, इससे अजीम ना कोई कामयाबी है ना इससे बढ़ के कोई तिजारत है। जिस कामयाबी को खुदा फरमाए कामयाबी है, और जिस तिजारत को खुदा फरमाए तिजारत है, उससे बढ़ के तिजारत और कामयाबी क्या हो सकती है? अब इसके बाद आगे इरशाद होता है, व उखरा तुहिब्बूनहा नसरुम मिनल्लाहि व फतहुन करीम व बशिरिल मुमिनीन, और एक दूसरी नेमत तुम्हें देगा जिसे तुम पसंद करते हो। वो दूसरी नेमत क्या है? वो अल्लाह की मदद और जल्द आने वाली फतह, और ए हबीब मुसलमानों को खुशखबरी सुना दो। फरमाया आखिरत की नजात, गुनाहों की मुआफ़ी, जन्नत में दाखिला, ये एक ये एक बशारत, ये एक अलहदा बशारत है जो अल्लाह ताला ने अता फरमाई, इसके अलावा अल्लाह ताला तुम्हें वो नेमत अता फरमाएगा जो तुम्हें पसंद है। वो तुम्हें जो पसंद है नेमत वो कौन सी? जब अल्लाह रसूल पे सच्चा ईमान होगा और राह खुदा में जानो माल कुर्बान करने का जज्बा होगा, तो फिर तुम्हें दूसरी बशारत क्या मिलेगी? फरमाया वो अल्लाह अज़्ज़ा वजल की मदद और जल्द आने वाली फतह है। जो जल्द आने वाली फतह है वो फतह या तो फतह मक्का या फारस और रूम के जो शहर और ममालिक फतह हुए वो मुराद है। तो पता चला कि खुदा की नुसरत और खुदा की मदद तब मिलती है जब ईमान सच्चा हो और राह खुदा में जानो माल कुर्बान करने का जज्बा हो। ईमान कच्चा, खुदा पे भरोसा नहीं, एतमाद नहीं, तवक्कुल नहीं, और बस अपना मुल्क और वतन ही सबसे बड़ी चीज़ है, खुदा की रजा से बढ़ के मुल्क और वतन बना लें तो फिर कोई खुदा की मदद नहीं आती। फिर कोई खुदा की, खुदा मदद तब करेगा जब खुदा की बात पे अमल करेंगे। और खुदा ने फरमाया नसरु मिनल्लाह व फतहुन करीब, अल्लाह की तरफ से मदद और करीबी फतह तब मिलेगी जब तुमीनुना बिल्लाह व रसूल ही पर अमल होगा। आप बोल लो जी हम तो खुदा के लिए लड़ते ही नहीं, हम तो खुदा के लिए थोड़ी काम कर रहे हैं, हम तो सिर्फ मुल्क के लिए काम कर रहे हैं। तो फिर मुल्क के लिए काम करो, फिर मुल्क ही मदद करेगा, खुदा नहीं मदद करेगा। खुदा के नाम पे खुदा की सच्चा ईमान रखते हुए खुदा के दीन के लिए करोगे तो खुदा तुम्हारी मदद करेगा। तो तरीका ये है, अगर खुदा की मदद चाहिए तो यूं मदद मिलेगी, वैसे खुदा फिर मदद नहीं फरमाएगा, तुम्हें तुम्हारे हाल पे छोड़ देगा। तुम पावरफुल हो तो तुम जीत जाओगे, दूसरा पावरफुल हो तो वो जीत जाएगा। लेकिन अगर कम ताकत के बावजूद दुश्मन से जीतना है तो फिर खुदा की मदद से जीतोगे, और खुदा की मदद तब आएगी जब अल्लाह रसूल पे सच्चा ईमान होगा और इसके साथ अल्लाह और उसके अल्लाह की राह में जानो माल कुर्बान करने का जज्बा होगा, तब अल्लाह तबारक की मदद आएगी। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने बशारत यहां पर अता फरमाई। अब इसके बाद इरशाद होता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसारल्लाह कमा क़ाल ईसा इब्न मरियम लिलहवारिशीन للحواريشين من أنصاري إلى الله قال الحواريشون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيجدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين
أي إيمان والو الله کے دین کے مددگار بن جاؤ जैसे ईसा बिन मरियम ने हवारियों से फरमाया था। कौन है जो अल्लाह की तरफ होकर मेरे मददगार हैं? हवारियों ने कहा हम अल्लाह के दीन के मददगार हैं। तो बनी इसराइल से एक गुरोह ईमान लाया और एक गुरोह ने कुफ्र किया, तो हमने ईमान वालों को उनके दुश्मनों पर मदद दी तो वो गालिब हो गए। ये इससे पिछली आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया था कि अल्लाह रसूल पर ईमान लाओ, राह खुदा में जानो माल कुर्बान करने का जज्बा होना चाहिए। यहां पर अल्लाह ताला ने अब उसकी एक और मिसाल बयान फरमाई और सराहत के साथ वो हुक्म भी दिया। इरशाद फरमाया कूनू अंसारुल्लाह, इसका जो डायरेक्ट तर्जुमा है वो ये है अल्लाह के मददगार बन जाओ। मुराद उससे यह है कि अल्लाह के रसूल के मददगार बन जाओ, अल्लाह के दीन के मददगार बन जाओ। लेकिन जो अल्फाज कुरानी का, सिर्फ अल्फाज कुरानी का तर्जुमा है वो ये है अल्लाह के मददगार बन जाओ। तो यहाँ अल्लाह ताला ने अपने बंदों को हुक्म दिया कि वो खुदा के दीन के खादिम बने, खुदा के दीन के मददगार बने। अल्लाह ताला बेपरवाह है, वो तो गनी है, उसको किसकी हाजत, किसी की हाजत है? वो अल्लाहुस समद, वो बेनियाज है, गनीयुन अनिल आलमीन, वल्लाहुल गनी वअंतुमुल फुकरा। लेकिन हमें हुक्म के तौर पे फरमाया कि अल्लाह के दीन के मददगार बन जा। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल बयान फरमाई कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों से, हवारी उनके ख़ास सहाबी जो थे, जो ख़ास करीबी लोग थे, उनसे फरमाया कि कौन है जो अल्लाह के दीन की तरफ होके मेरा मददगार बने? तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा से, अपने हवारियों से मदद मांगी। इसे ये भी पता चला कि मदद मांगना शिर्क नहीं, मदद मांगना शिर्क नहीं, जब मखलूक समझ के मदद मांगी जाए। जब खुदा समझ के मदद मांगेंगे अल्लाह के अलावा किसी से तो शिर्क है। जब अल्लाह के सिवा किसी और को खुदा समझ के मांग, जैसे बुत परस्त बुतों से मांगते, सितारा परस्त सितारों से मांगते हैं, सूरज के पुजारी सूरज से मांगते हैं, या और देवी देवताओं के पुजारी उनसे मांगते हैं, वो क्या खुदा समझ के मांगते हैं, वो शिर्क है, वो कुफर है। लेकिन अगर अल्लाह की मखलूक से खुदा समझ के नहीं, खुदा के बंदे समझ के मांगा जाए और खुदा की दी हुई ताकत से मदद के काबिल समझ के मांगा जाए तो ये शिर्क नहीं होता। हजरत ईसा अलैहि सलातो वसलाम खुद भी मदद करते थे, आपने भी तो मदद की ना, लोग आते थे जनाब आंख अंधे हैं, कोढ़ का मर्ज है, बीमार हैं, तो हजरत ईसा अलैहि सलातो वसलाम दम करके ठीक कर देते, तो लोग मदद मांगते थे, ईसा अलैहि सलातो वसलाम करते थे। अब यहां हजरत ईसा अलैहि सलातो वसलाम मदद तलब फरमा रहे, तो ना हजरत ईसा अलैहि सलाम का मदद तलब फरमाना शिर्क, ना आपसे मदद मांगना शिर्क। ये शिर्क तब बनता है जब किसी को खुदा समझ के मांगा जाए, अल्लाह के अलावा किसी को खुदा समझ के मांगा जाए तो शिर्क है, वरना नहीं। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब अपने हवारियों से फरमाया कि कौन है जो दीन खुदा की तरफ होकर मेरी मदद करेगा, मेरा मददगार बनेगा, तो हवारियों ने कहा कि हम, उन्होंने अपने आप को पेश कर दिया। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद एक ग्रोह ईमान लाया, एक ने कुफ्र किया, फिर वो आपस में लड़ते रहे। तो अल्लाह ताला ने ईमान वालों को बिल आखिर गलबा अता फरमाया। बिल आखिर कैसे? बिल आखिर यूं कि मुसलमान भी तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले हैं। तो ये जो मुसलमान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले थे और फिर मुसलमानों के साथ जो दीगर ईसाई कलिमा पढ़कर मुसलमान हो गए, वो इनको अल्लाह ताला ने काफिरों पर गलबा अता फरमाया। तो ये था कि अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों को ईसा अलैहिस्सलाम के दुश्मनों पर गलबा अता फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला हमें हुक्म कुरानी पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।